समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश विदेश के समाचार होंगे। इसके अलावा हम आर्थिक जगत और खेल जगत की हलचल भी जानेंगे। बहुत कुछ रहेगा आज के कार्यक्रम में। इस अंक में मैं हूं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो प्रियंका। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट प्रियंका अरोड़ा। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों के लिए कल मतदान होगा।
Political fate of Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Anurag Singh Thakur, Congress leader Vikramaditya Singh, and TMC leader अभिषेक बैनर्जी टू बी सील्ड इन ईवीएम्स।
उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में। ओडिशा और बिहार में अनेक लोगों की मौत।
इन मणिपुर फ्लैश फ्लड कंटिन्यूज टू रीक हैवक। 3 किल्ड एंड ओवर 1,88,000 पीपल अफेक्टेड।
अमरीका ने यूक्रेन को रूस में कुछ निश्चित ठिकानों पर अमरीकी हथियारों से हमले की अनुमति दी।
एंड इन सिंगापुर बैडमिंटन ओपन इंडियन ड्यूक ट्रिसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद storms into the semi-finals. And now, Priyanka, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Cinema Lovers Day and World No Tobacco Day. So to start off with the World No Tobacco Day, NT Tobacco Day, also known as World No Tobacco Day, is observed as a global initiative led by the World Health Organization, WHO, to raise awareness about the harmful effects of tobacco use and to advocate for effective policies to reduce tobacco consumption. The day is observed to educate the public about the health risks associated with tobacco use, including smoking and smokeless tobacco products, and highlight the importance of quitting tobacco, and encourages governments, organizations, and individuals to take action against tobacco use. And the day is celebrated every year on 31st of May, that is today, and the day is dedicated to raising awareness about the harmful effects of tobacco smoking on the overall health and well-being. While tobacco smoking is dangerous for everyone, kids and children are the most affected ones because they're exposed to second and third hand smoke.
जी हाँ, तंबाकू का सेवन हानिकारक होते हुए भी इसका सेवन किया जाता है। और आपको बता दें कि हर साल 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू से होती है। इसके अलावा तंबाकू कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और स्ट्रोक का प्रमुख कारण है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। आइए उनसे बात करते हैं।
यस, वी हैव डॉक्टर अविनाश संथालिया, Senior Medical Officer, Directorate General of Health Services. Doctor, if you can hear me, Dr. Avinash, we know that through this day, WHO raises awareness about the health risks of tobacco use and advocates for stringent measures to protect public health, especially among the youth. So tell us, Doctor, why tobacco control is important.
First of all, I would like to say that tobacco consumption causes, as you have already mentioned in your initial discussion, the problem is very grave because 5 Indians die every 2 minutes due to the use of tobacco.
Right.
Secondly, as on date in our country, we have around 26 to 27 crore population which is using tobacco in one or the other form. If we compare these numbers to the population, it could be as equal as the population combined of many European countries. Mm-hmm. So, given these facts, the problem is huge. Another issue is no organ in the body is untouched by tobacco. Every organ, tobacco affects every organ of the body, right from the head, eyes, to the brain, heart, lungs, our stomach, intestines, to the fingertips as well. So, no organ इज लेफ्ट अनटच्ड।
जी डॉक्टर संधालिया, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी दें श्रोताओं को कि तंबाकू में क्या क्या चीजें आती हैं।
देखिए मुख्य रूप से तंबाकू दो प्रकार का होता है, स्मोक टोबैको हम बोलते हैं जिसके अंदर बीड़ी सिगरेट हुक्का आता है, दूसरा आता है स्मोकलेस टोबैको जिसके अंदर जर्दा खैनी गुटखा ये चीजें आती हैं। तो ये दो प्रकार से सेवन किया जाता है।
जी डॉक्टर, और आजकल एक ई सिगरेट्स का चलन भी बहुत हो रहा है, उसका सेवन होता है, तो उसके बारे में भी जानकारी दें।
जी ये बड़ा अच्छा विषय आपने पुटअप किया है और इसी के माध्यम से मैं श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगा कि हम भारत में जो है पैका एक्ट है जिसके अंदर 2019 के अंदर पैका एक्ट के माध्यम से हम भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन कर दिया गया है, तो ये हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और इनका सेवन जो है कानून के विरुद्ध है, हमारे देश में नहीं होता है।
जी अगर हम देखें WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कई देशों में 13 से 15 साल के एक अनुमान है 3,70,00,000 बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं और इस बार का जो विषय है वो भी बच्चों से ही जुड़ा, जो उनमें सेवन बढ़ रहा है, तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है, क्या उपाय किए जा रहे हैं और मतलब बच्चों को इसकी लत छुड़वाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
जी बच्चों को तंबाकू की जो कंपनीज हैं वो टारगेट इसलिए करती हैं कि तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने ही यूजर्स को किल करता है। अगर 100 लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो 50 लोग
क्वालिटी अ यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स इवोक डीप इमोशंस एंड इंस्पायर आवर इमेजिनेशन एज वी इमर्स आवरसेल्व्स इन द वर्ल्ड ऑफ मूवीज यू ऑफन फाइंड दैट दे आर मोर देन जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट They are a powerful art form that has the capacity to influence our lives in profound ways. And Indian films are unquestionably the most seen movies in the world, not just talking about the billion-strong audiences in India itself, where 12 million people are said to go to the cinema every day. People from very different cultural and social worlds have a great love for Indian popular cinema, and many have been Hindi films fan for over 50 years. And Indian cinema is world famous for the staggering amount of films it produces. The number is constantly on the increase and recent sources estimate that a total output of some 800 films a year are made in different cities including Madras, Bangalore, Calcutta and Hyderabad.
जी अभिषेक, हमारे देश में सिनेमा से पहले नाटकों का बोलबाला था और उस समय दादा साहब फाल्के ने जो भारतीय सिनेमा जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया और स्थापित किया सिनेमा को देश में, अपने अमूल्य योगदान से फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन जैसे विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया और हमने बताया कि 1912 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई और आपको पता है कि किसी तरह फिल्म को पूरा तो किया गया और इसका प्रदर्शन भी एक बड़ा समस्या था क्योंकि जैसे बताया नाटकों का बोलबाला था, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 3 आने खर्च कर 1 घंटे की फिल्म कौन देखता है, तो दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फाल्के जी ने नए ढंग से इसका विज्ञापन किया। सिर्फ 3 आने में देखिए 2 मील लंबी फिल्म में 57,000 चित्र, तो वो इतना वहां से लेकर आज तक का सफर हमने तय किया है जब बिना रंग वाले सिनेमा से लेकर कलरफुल सिनेमा तक, मूक फिल्मों से लेकर डॉल्बी साउंड तक, जीरो ग्राफिक्स से लेकर एनिमेशन तक, ये सफर काफी अनूठा रहा है।
वेरी नाइसली सेड प्रियंका, लेट्स टॉक अबाउट द मैजिक ऑफ सिनेमा। लेट्स लुक एट 5 वेज सिनेमा इज मैजिकल। फर्स्टली इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स of films is the ability to transcend language and cultural barriers through the visual and emotional language of cinema. We can connect with stories and characters from around the world. Secondly, films provide a temporary escape from the realities of life. They allow us to step into the shoes of characters, experiencing the joys, sorrows and challenges. Thirdly, some films challenge our thinking, raise questions and provoke meaningful discussions. They explore complex themes, societal issues and moral dilemmas. Fourthly, through laughter, tears and suspense, films evoke a range of emotions. This emotional catharsis can be therapeutic. And filmmaking, lastly, is a blend of various art forms, including writing, acting, music and visual design. And the mastery of storytelling in film is a testament to the creativity and skill of a filmmaker. So this then, Priyanka, are 5 ways in which we experience the magic of cinema. So to conclude our discussion on cinema, let's remember what the great Martin Scorsese said. Well, he said, now more than ever, we need to talk to each other, to listen to each other, and understand how we see the world, and cinema is the best medium for doing this. So on National Cinema Day, I want to leave you with the thought that cinema is a mirror that can change the world.
और आज शुक्रवार है तो कई शायद फिल्में रिलीज भी हो रही होंगी. वीकेंड आ रहा है तो सिनेमा डे मना रहे हैं और साथ में आप अपने परिवार के साथ द फिल्म
को एब्सोल्युटली. Commemorating Cinema Lovers Day today, TVR Cinemas and Cinepolis and other cinemas offering movie tickets at just ₹99.
तो ये छोड़े ना ऑफर और जरूर देखे फिल्में. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का. हम जानते हैं कि देश में भीषण गर्मी कई क्षेत्रों में पड़ रही है और उसके कारण देश भर में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ये घटनाएं मुख्य रूप से एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक मीटर और तार, सूखी घास, कूड़े के डंपिंग स्थलों जैसी जगहों पर हो रही है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें किसी भी आग की घटना का सामना करना पड़ता है तो वे तुरंत परिसर छोड़ दें और अग्निशमन विभाग को फोन करें. उन्होंने कहा कि अगर लोग कुछ निवारक कदम उठाएं तो देश में आग की घटनाओं में कमी आ सकती है.
काफी इक्विपमेंट नए खरीदे गए थे, रॉबर्ट खरीदा गया था, वाटर टावर खरीदी गई थी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट बेड़े में जोड़े गए थे जिससे कि हम फायर के टाइम ठीक से और कॉल को अटेंड कर सकें और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकें. हमने सभी लोगों की जो छुट्टियां बहुत रिस्ट्रिक्ट की हुई है, सारे अफसरों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है क्योंकि कॉल अनप्रेसिडेंट हो रही है, नंबर ऑफ कॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं. 250 कॉल एक दिन में अटेंड करना ये एक तरह से इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल पर डे है. अभी तक एक दिन में इतनी कॉल कहीं नहीं मिली.
और उत्तर प्रदेश भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है और पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं राज्य ने. मौसम विभाग के मुताबिक इस बार झांसी में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए. इससे पहले 1984 में झांसी में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. एक रिपोर्ट सुनते हैं.
उत्तर प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश में ज्यादातर जनपदों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है. इसके साथ ही बीते कई दिनों से लगातार मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर चेतावनी भी जारी की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही काफी ऊपर पहुंच गए हैं. कानपुर में अधिकतम तापमान ने 1970 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. यहां इस बार अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. इससे पहले यहां 1970 में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अभी तक प्रदेश में सबसे अधिक तापमान झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. इसी तरीके से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ऑल टाइम हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया है.
उत्तर प्रदेश में उच्चतम तापमान की बात करें तो इस साल अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जैसे झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इससे पहले 1984 में 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. तो अब तक का जितना भी हमारा तापमान का रिकॉर्ड उसमें सबसे हाईएस्ट झांसी में रिकॉर्ड किया गया. उसी तरीके से अगर हम आगरा की बात करें तो 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं पहले जो सबसे हाईएस्ट था 48.5 डिग्री सेल्सियस 1994 में दर्ज किया गया. अगर हम सामान्य मानसून अराइवल की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 19-20 जून को मानसून अपने प्रदेश में आ जाता है. जैसा कि 30 जून को केरल में मानसून दस्तक दे दिया है, अब हम इसको अंडर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसका मूवमेंट है.
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में कुछ कमी आने की संभावना है लेकिन लू का असर अभी बना रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग दिन के समय घर से निकलने से पहले सामान्य सावधानियां जरूर बरतें ताकि वह बीमार न पड़ें. परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
31st of May 1921, Gandhian nationalist Pingali Venkaiya presented the initial design of the national flag to Mahatma Gandhi during the Vijayawada session of the All India Congress Committee. The original design consisted of two colors, red and green, to the center of the horizontally divided flag, Lala Hansraj Sondhi, suggested the addition of the traditional spinning wheel, which was associated with Gandhiji's crusade to make Indians self-reliant by fabricating their own clothing from local fibers. Gandhiji modified the flag by adding a white stripe in the center, thus also providing a clearly visible background for the spinning wheel.
The flag came to be associated with nationhood for India, and it was officially recognized at the annual meeting of the Congress Party in August 1931. At the same time, the current arrangement of stripes and the use of deep saffron instead of red were approved. During the Second World War, Subhash Chandra Bose used the flag without the spinning wheel in the territories freed by the Indian National Army. Post-independence, a National Flag Committee under President Rajendra Prasad replaced the charkha with the Ashok Chakra.
We also remember freedom fighter and former Chief Minister of Madhya Pradesh, Dwarka Prasad Mishra, who died on the 31st of May 1988. Dwarka Prasad Mishra actively contributed to the nationalist movements and was associated with the non-cooperation movement and the Quit India movement.
Dwarka Prasad Mishra was born on 5th of August 1901 in Unnao district of Uttar Pradesh. In the year 1920, Dwarka Prasad Mishra jumped into the freedom struggle on the call of Mahatma Gandhi. He joined the non-cooperation movement and remained in the front line of the nationalist movements. He served prison sentences during the years 1932, 1940 and 1942. He became a minister of central provinces in 1937 and 1946.
A journalist and literator, Dwarka Prasad Mishra edited Shri Sharda monthly in 1921, Dainik Lokmat in 1931, and the weekly Sarathi in 1947. Motilal Nehru praised Dwarka Prasad on the editorial written in Lokmat on the death of Lala Lajpat Rai. He had acknowledged that even the best criminal lawyer of India cannot prepare a better charge sheet on the gruesome incident.
After independence, Mishra was elected to be the Chief Minister of Madhya Pradesh twice. He remained committed to the welfare of the people till the end. We salute the great Indian.
We also remember social reformer Santaram B.A., who died on the 31st of May 1988. Santaram devoted his life to the cause of building a casteless and classless society through his writings and magazines like Chan, Sudha, Saraswati, Kranti and Bharatiya. He was a close friend of Rahul Sankrityayan.
Santaram was born at Purani Basi near Hoshiarpur, Punjab, on 14th of February, 1887, he joined Arya Samaj at a young age and founded the Jat Path Todak Mandal in 1922. The Mandal drew attention of the entire nation and received overwhelming support as well as opposition from the conservatives. The Mandal invited Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar to deliver the presidential address at its annual convention at Lahore in 1936. However, when the address was postponed after vehement opposition from the conservatives, Baba Saheb published the speech as a book and thus came into being one of his most famous books, The Annihilation of Caste.
Santaram wrote more than 100 small booklets advocating Hindu-Muslim unity and an end to caste discrimination. He continued to work for the emancipation of the depressed classes for his entire life. We salute the great Indian.
In business news today, the domestic benchmark indices Sensex and Nifty snapped its 5 days fall and ended in green today. Amid mixed global cues, the BSE Sensex added 75 points or 0.1% to close at 73,961. The NSE Nifty was up 42 points or 0.19% to 22,531 at the closing bell. And moving on to some sports news and Singapore Badminton Open 2024, the Indian women's pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand made it to the semi-final after beating Kim So-yung and Kong Hee-yong of South Korea today. Jolly and Gopichand beat the opponents 18-21, 21-19, 24-22 in the women's doubles quarterfinal match. The game lasted for 1 hour and 19 minutes. And now we have reached that section in a program where we remember all those greats who are associated with today's dates. And we start with Walter Whitman Jr., who was born in 1819 today. He was an American poet, essayist, and journalist. He is considered one of the most influential poets in American literature. Whitman incorporated transcendentalism and realism in his writings and is often called the father of free verse. He worked as a journalist, a teacher, and a government clerk. Whitman's primary poetry collection, Leaves of Grass, first published in 1855, was financed with his money and became well known. The work attempted to reach the ordinary person with an American epic. Whitman continued expanding and revising the Leaves of Grass until he died in 1892.
और भारत के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी रानियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और दृढ़ निश्चय से विरोधियों को कड़ी टक्कर दी। ऐसी ही एक महारानी थी रानी अहिल्या भाई होलकर। आज उनकी जयंती है। उनका जन्म 31 मई 1975 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोड़ी ग्राम में हुआ था। उस दौर में जब महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, अहिल्या बाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति दी थी। अहिल्या बाई की ये शादी प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेर राव से हुई थी। वह भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। वे मध्य प्रदेश के महेश्वर की कर्ता धरता ही नहीं बल्कि होलकर साम्राज्य की एक अहम हिस्सा भी थी। उन्हें न सिर्फ मालवा की रक्षा के लिए जाना जाता है बल्कि उनके द्वारा किए गए कई सारे सामाजिक कार्यों के लिए भी उन्हें आज तक याद किया जाता है।
क्लिंटन ईस्टवुड जूनियर वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1930। ही इज एन अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर। आफ्टर अचीविंग सक्सेस इन द वेस्टर्न टीवी सीरीज रॉहाइड, Eastwood rose to international fame with his role as the man with no name in Sergio Leone's Dollars Trilogy and Spaghetti Westerns, in the mid-1960s and an anti-hero cop, Harry Callahan, in the five Dirty Harry films throughout the 1970s and 80s. These roles, among others, have made Eastwood an enduring cultural icon of masculinity. Elected in 1986, Eastwood served 2 years as the mayor of Carmel by the Sea, California.
और आज के दिन निधन हुआ था मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास का। उनका जन्म पूर्वी बंगाल में 1914 में हुआ था जो आज बांग्लादेश में है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। वे काफी समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और रोटी, अनोखा प्यार, तराना और वारिस कुछ उनकी यादगार फिल्मों में शुमार हैं। आइए सुनते हैं उनके द्वारा संगीत से सजाए गए फिल्म किस्मत के गीत को। ये गीत उस दौर का है जब हम अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे।
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
Bonham was born on this day in 1948. He was an American musician and drummer for the rock band Led Zeppelin. Let's listen in to the band's hit track, Stairway to Heaven.
There's a lady in shoe, all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. And when she gets there, she knows if the stars are all closed, with a word she can get what she can.
और प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया की भी आज जयंती है। तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। 70 और 80 के दशक की समानांतर फिल्मों में सुमधुर संगीत देने के लिए वनराज भाटिया मशहूर थे और उनकी ये पहली फिल्म बतौर संगीतकार थी अंकुर। और इसके बाद मंथन में भी उन्होंने संगीत किया। सुनते हैं उसी फिल्म का ये गीत।
मेरो गाम का था पारे जा, दूध की नदी आवागे जा, कोयल जो गाए मारे घर अंगना न भूलो ना, मारे घर अंगना न भूलो।
Raj Khosla was born on this day in 1925. He was one of the top directors, producers and screenwriters in the Hindi film industry from 1950s to the 1980s. He was known for bringing a new noir style in Indian cinema and as a women's director because he showcased actresses at the best.
बिल्कुल, वे आकाशवाणी से भी कुछ समय तक जुड़े रहे और खासकर विमेन सेंट्रिक उनकी फिल्मों में महिलाओं की भूमिका बहुत सशक्त रहती थी. ऐसी एक वो कौन थी का ये यादगार गीत आपको सुनाते चलते हैं. जी हाँ, हमारी मुलाकात जरूर होगी ठीक 4:30 बजे कल भी. प्रियंका और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम ही संपन्न करने की अनुमति दीजिए.
नमस्कार.